महाबंध पुस्तक पहिली लेक्चर नंबर 13। ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो वर्षायाणम्, नमो लोये सौवसाहूणम्। भूतबलिप्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकम्, महाधवलविख्यातं महाबंधम नमाम्यहम्। आचार्य श्री भूतबलि भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का यह छठे नंबर का खंड है। इसमें जो प्रथम पुस्तक है, प्रथम जो प्रकृति बंध अधिकार उसके अंदर है, और ये पहली पुस्तक के पृष्ठ संख्या 54 पर हम आ गए हैं। इस पुस्तक में सबसे पहले हमने प्रकृति समुत्कीर्तना देखी, यानी प्रकृति कौन कौन सी होती है उसके नाम बताए, मूल प्रकृतियों के तथा उत्तर प्रकृतियों के। अब बात चल रही है बंध स्वामित्व विषय, जो हमारे आठवें पुस्तक का नाम ही बंध स्वामित्व विषय था, और वही बात यहाँ उन्होंने शुरू की थी, परंतु ओग और नरक गति तिर्यंच गति होने के बाद पूरा त्रुटित अंश है। पूरा आगे के सारे जो मार्गणा है उसमें कुछ कथन नहीं था, और डायरेक्ट एकदम काल प्ररूपणा शुरुआत का त्रुटित अंश होकर फिर उन्होंने मार्गणा में चालू हो गया। तो ये बीच वाला सारा जो त्रुटित अंश है, इसके लिए ये जो सुमेर चंद दिवाकर जी है, उन्होंने कर्मकांड के आधार से कौन सी मार्गणा में कौन सी प्रकृतियां बनती, बस इसका विवेचन किया है, और उसी को हमने वो आठवीं पुस्तक के आधार से भी कल देखा था, और हमने जो लिख के निकाला था उसकी भी हमने बात देखी थी। तो अभी हमारी बात यहाँ सम्यक्त्व मार्गणा की चलने वाली है। पहले हम पुस्तक में से पढ़ते हैं सम्यक्त्व मार्गणा, पेज नंबर है 54, महाबंध पुस्तक पहली, प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व में। अभी सम्यक्त्व मार्गणा है तो उसके भेद याद है क्या ब्रह्म? सम्यक्त्व मार्गणा के भेद, यानी सम्यक्त्व की अपेक्षा जीवों के भेद। हाँ, प्रथम ऑप्शन सम्यक वाले, प्रथम ऑप्शन है ऑप्शमिक सम्यक वाले, हाँ ऑप्शमिक शायिक, ये तीन भेद तो ये हुए, और हाँ मिथ्यात्व सासाधन और मिश्र, ये सम्यक की मार्गणा की अपेक्षा ये भेद होते हैं। देखो अब उसमें प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व में मिथ्यात्व गुणस्थान संबंधी 16 तथा सासाधन गुणस्थान संबंधी 25 प्रकृतियों का अभाव होने के साथ, उस काल में तो देवायु भी नहीं बनती है, मनुष्य भी, यानी कोई भी आयु, पहले दो आयु तो पहले उच्छित्ति हो गई है, परंतु आयु यहाँ नहीं बनती है प्रथम उपशम के काल में, तो देवायु तथा मनुष्यायु का अभाव होता है, इसलिए 43 प्रकृतियों को घटाने से यहाँ 77 प्रकृतियों का बंध होता है। यहाँ चौथे से सातवें पर्यंत 4 गुणस्थान कहे गए, प्रथम उपशम सम्यक्त के साथ कोई चौथे में जाता है, कोई पांचवे में, कोई सातवें में जाकर फिर छठा सातवा, प्रथम उप के काल, प्रथम उपशम के काल में छठा सातवा होता रहता है। अभी उसमें प्रत्येक गुणस्थान की जो अलग अलग प्रकृतियां जितनी बनती है उसकी बात वहां हमको देखनी पड़ेगी। द्वितीय उपशम सम्यक्त में चौथे से 11वें पर्यंत 7 गुणस्थान है, हमने देखा था द्वितीय उपशम होता तो सातवें में है, सातिशय अप्रमत्त में, और फिर छठा सातवा करके 11वें तक चढ़ता है, फिर क्रम से नीचे आता है छठे तक, और फिर बाद में पांचवें में चौथे में भी जा सकता है। तो द्वितीय उपशम सम्यक्त के गुणस्थान 4 से 11। देखो यहाँ लिखा है सातवें गुणस्थान से 11वें पर्यंत चढ़कर जब जीव वह जीव नीचे उतरकर चौथे गुणस्थान में आता है, तब उसके प्रथमोपशम सम्यक्त्व के समान 77 प्रकृतियों का बंध होता है। यहाँ भी मनुष्यायु तथा देवायु का अभाव है। उसके लिए उन्होंने गोमटसार कर्मकांड की जो रेफरेंस दिया है, सवुव सम्मे सर्वोपशम्मे नर सुर आवुणी नत्थी नियमेन। नीचे का पैराग्राफ पढ़ते हैं, ये पूरा पढ़ लेते हैं फिर हम अपने पुस्तक पर चले जाएंगे। गोमटसार कर्मकांड की संस्कृत टीका में लिखा है, अत्र प्रथम द्वितीय उपशम सम्यक्त्वयोः आयु अबंधात, यानी आयु का अबंध होने से, प्रथम उपशम सम्यक्त्व और द्वितीय उपशम सम्यक्त्व में आयु का बंध नहीं है। आरोहक अपूर्वकरण प्रथम समये मरणोन इति विशेषो अनर्थ कहा, क्या कहना चाहते हैं? प्रश्न ये है कि यहाँ आयु का बंध नहीं है, तो इसलिए चढ़ने वाले आठवें गुणस्थान के पहले भाग में मरण नहीं होता, ये लिखने की क्या आवश्यकता थी, ये पूछ रहे। इति न वाच्यम, तो कहते ऐसा योग्य नहीं है। प्रागबद्ध देवायुष्कस्यापि सातिशय प्रमत्तस्य श्रेणी आरोहण संभवत, क्योंकि जिसने पहले देवायु का बंध किया है ऐसे सातिशय प्रमत्त, जो सातिशय प्रमत्त है उसको भी श्रेणी का आरोहण कर सकता है। अप्रमत्त होना चाहिए, सातिशया प्रमत्त होना चाहिए। आवाज आ रही है? ठीक है, हाँ अभी भी है आवाज, आप जरा अभी आवाज आई तो जरा उठ के करना, यहाँ करने में तकलीफ होती है मुझे। हाँ देखो क्या कहते हैं, पेज नंबर 54 पर हम पढ़ रहे थे लक्ष्मी, वो हम नीचे का पैराग्राफ पढ़ रहे थे, उसमें से तीन लाइन हो गई संस्कृत में से, चौथी लाइन पढ़ते हैं। यहाँ वहाँ सातिशय प्रमत्त लिखा है, वो सातिशया प्रमत्त करना, सातिशय अप्रमत्त शब्द है, सातिशया प्रमत्त अ उसके य के अंदर अ जोड़ना चाहिए। यहाँ यह प्रश्न है कि यह प्रश्न किया है, प्रथमोपशम तथा द्वितीयोपशम सम्यक्त्वों में आयु बंध का अभाव कहा है, तब श्रेणी का आरोहण करने वाले अपूर्वकरण गुणस्थान के प्रथम समय में मरणोन मरण रहित ऐसा विशेषण निरर्थक रहा। इसका समाधान यह है कि पहले देवायु का बंध करने वाले सातिशय अप्रमत्त के श्रेणी का आरोहण संभव है, यानी पहले आयु बंध है किया हुआ है फिर भी यहाँ मरण नहीं होता। कौन से अपूर्व चढ़ने वाले अपूर्वकरण के प्रथम भाग में, प्रथम समय लिखा परंतु प्रथम भाग कहना चाहिए, है पूर्व में आयु बंध करने के अंतर्मूर्त पर्यंत सम्यक्त्व में मरण नहीं होता है। क्या क्या लिखा इन्होंने, इस प्रकार प्रथमोपशम सम्यक्त्व में तथा श्रेणी चढ़ते अपूर्वकरण के प्रथम भाग के अंतर्मूर्त में मरण नहीं होता है, अन्यत्र उपशम श्रेणी में मरण होता है। अब ये उपशम सम्यक्त्व संबंधी चर्चा की, अब कहते क्षोपशम, ये सम्यक्त्व मार्गणा संबंधी यहाँ जो विशेषण उन्होंने विशेष चर्चा की है गोमटसार के आधार से उसकी बात देखते हैं। क्षोपशम अथवा वेदक सम्यक्त्व चौथे से सातवें पर्यंत कहा है, वहाँ प्रथमोपशम सम्यक्त्व की 77 प्रकृतियों में मनुष्यायु तथा देवायु को जोड़ने से 79 का बंध कहा है। क्षोपशम समय दृष्टि के, क्षायिक समय दृष्टि के तो आयु का बंध होगा उस काल में, प्रथमोपशम के काल में आयु का बंध नहीं है। क्षायिक सम्यक्त्व में चौथे से 14वें पर्यंत गुणस्थान होते, यहाँ भी 79 का बंध होता है, ये चौथे में, ऊपर ऊपर के गुणस्थाने में जो जहाँ जितनी बनती उसकी बात है। अब ये तो हमने सम्यक्त्व मार्गणा इसमें से देखी है, अभी हम आठवीं पुस्तक के आधार से और अपनी पुस्तक जो हमने बनाई है उसके भी आधार से देखेंगे बात, सम्यक्त्व मार्गणा निकालने हमको।
ये सब अपने पूर्व में आयु बंद करने के अंतर्मुख पर्यंत सम्यक में मरण नहीं होता, तो अंतर्मुख का अंतर्मुख प्लस एक समय लेना पड़ेगा।
नहीं 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 देखो नहीं वो जो लिखा है ना वो कुछ गड़बड़ी जैसा लिखा है, जिसने गुमट सार उन्होंने संस्कृत टीका लिखी है, यहाँ संस्कृत टीका के पृष्ठ लिखे हैं। हाँ
तीसरी लाइन ऊपर लिखा है, में मरण नहीं होता।
देखो यहाँ क्या लिखा है, पूर्व में आयु बंद करने के नहीं चाहिए, बद्धायु के ऐसा चाहिए, बद्धायु के फिर सम्यक तो लिखा है, नहीं तो जिसको द्वितीयोपशम समय दृष्टि की बात चाहिए, जो ऑलरेडी बद्धायु है उसके अंतर्मुर तक मरण नहीं है, यानी कौन सा वो निद्रा प्रज्ञा का बंध है तब तक उसका बंध विच्छित नहीं होती, तब तक उसका मरण नहीं है, बस इतना कहना चाहते। ये वाक्य थोड़ा अटपटा है, शायद उसके जो ट्रांसलेशन किया है वो बराबर ठीक नहीं है, अभी संस्कृत टीका तो अपने सामने है नहीं यहाँ पर। और हम कर्मकांड निकालेंगे तो भी गाथा और उसकी जो टीका है वो उसमें वो सभी बातें नहीं आ सकती, यहाँ निकालना है हमको 363 पर है क्या, आप लेके आए क्या? अरे वेरी गुड। हाँ देखो 363 बंध स्वामित्व विषय यहाँ बात चल रही है, बंध स्वामित्व विषय में पद्धति कैसी है उनकी, तो कौन विशिष्ट प्रकृति के कौन बंधक है कौन अबंधक है, जब हमको सम्यक तो मार्गणा देखनी है उसके एक एक भेद देखने हैं, तो औपशमिक सम्यक्त्व है तो उसके गुणस्थान कौन से, तो प्रथम औपशम के हमने देखे चौथे पांचवें छठे सातवें, तो उसमें कौन बंधक कौन अबंधक है, तो जो सातवें तक सबको बनती है वो पहले वो लिस्ट बताएंगे और कहेंगे चौथे से सातवें तक बंधक है, ये उनकी पद्धति है, फिर चौथे में जो बनती है ऊपर नहीं बनती है तो कहेंगे ये चौथे गुणस्थान वाले बंधक है शेष अबंधक है, ये इनकी पद्धति है। अब यहाँ हम पढ़ते हैं, देखो पेज नंबर 363 और 278 नंबर का जो सूत्र है उसके बाद में पहले पढ़ती हूँ, फिर हमने जो बनाए उसमें भी देखेंगे। सम्यक तो मार्गानुसार सम्यक दृष्टि और क्षायिक समय दृष्टि, यहाँ तो इन जनरल उन्होंने समय दृष्टि कह दिया है और क्षायिक समय दृष्टि भी कहा, तो सम्यक दृष्टि और क्षायिक समय दृष्टि कहेंगे तो गुणस्थान 4 से 14, तो उसमें बात अलग होगी, अभी उसमें अभिनिबोधिक ज्ञानियों के समान प्ररूपणा है, यानी क्या प्ररूपणा है, हमने देखा था अभिनिबोधिक ज्ञानी के समान, ये जो दसवें तक जो बनती है ना तो उसके चौथे से दसवें तक बंधक है ऐसा कहेंगे ज्ञानवर्णादि का, पर सातावेदनी की बात अभिनिबोधिक के समान नहीं होगी, उसमें क्या कहेंगे सातावेदनी के बंधक कौन है, चौथे से लेकर 13वें तक के बंधक, वो नेक्स्ट सूत्र में बताएंगे शायद, ख्याल में आते हैं बात। गुणस्थान नहीं है अभी निबोधिक ज्ञान ज्ञान की बात है 4 से 12, उसमें जो डिफरेंस है वो अभी बताएंगे, उनकी ये बात है इतनी विशेषता कहकर आगे बताने वाले हैं। देखो नीचे नेक्स्ट पेज पर लिखा है विशेष, केवल हम सूत्र पढ़ रहे हैं, विशेष है कि सातावेदनीय का कौन बंधक है और कौन बंधक है, तो असंयत से लेकर संयोगी तक बंधक है और शेष अबंधक है, शेष में 14वें गुणस्थान को लेना, फिर उसी पेज पर 364 ही आगे पढ़ लेते हैं, फिर हम अपनी पुस्तक में चले जाएंगे। वेदक सम्य दृष्टियों में, अब वेदक सम्य दृष्टि कहने से गुणस्थान प्रेरणा बेन 4 से 7, तो सातवें में जो बनती है उसको पहले ले लेंगे और उसको कहेंगे चौथे से सातवें तक सभी बंधक है, अभी सातवें में नहीं उसमें हास्य रति लेंगे, अरतिशोक यहाँ नहीं लेंगे, अरतिशोक के लेंगे चौथे से छठे तक बंधक है। तो देखो वेदक समय दृष्टियों में 5 ज्ञानावरण, 6 दर्शनावरण, 7 वेदनीय, 4 संज्वलन, पुरुष वेद, हास्य रति, भैजुगुप्सा। अब ये सातवें में वाले तो देवगति को ही बांध रहे हैं, देवगति, पंचेंद्रीय जाति, वैकृत तेजस कारमान शरीर, समचतुर संस्थान, वैकृत शरीर अंगोपांग, वर्ण गंध रस स्पर्श, देवगति प्राय ज्ञान पूर्वी अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास प्रशस्त अभ्याय गति त्रस बांदर पर्याप्त प्रत्येक शरीर स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदेय यश कीर्ति निर्माण तीर्थंकर उच्च गोत्र पांच अंतराय इनका कौन बंधक और कौन अबंधक है। यहाँ अक्षय संसार करके 14 गुणस्थान और सिद्धों के आश्रय से एक संयोगी 15 प्रश्न भंगों को उत्पन्न करना चाहिए। कौन इन्हें सभी गुणस्थानों में लगा लेना, भी वेदक समय को तो उतने ही 4 से 7 पर्यंत ही होते हैं। तो कहते हैं उसका उत्तर, असंयत समय दृष्टि से लेकर अप्रमत्त संयत तक बंधक है। ये बंधक है, अबंधक नहीं है, क्योंकि इसमें सारे वेदक समय दृष्टि आ गए और 4थे से 7वें तक तो इन प्रकृतियों का बंध होता ही होता है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
ये एक संयोगी 15 भंगों को उत्पन्न करना चाहिए।
हाँ, ये प्रश्नों के भंग बताए।
पहले गुणस्थान में कौन बंधक है?
हाँ हाँ, बस सही 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 सर, वो उन्होंने स्टार्टिंग में उसकी चर्चा की है इस तरह से। अब आगे बढ़ने के पहले हम ये पुस्तक में से पढ़ लेते, क्योंकि वो वही विषय चल रहा है ना यहाँ पर। कल हम कहाँ 7वें पुस्तक 7वें पेज तक आए थे, वही बात हम इसमें से पढ़ रहे अभी। सम्यक तो मार्गणा में सम्यक दृष्टि और क्षायिक सम्यक दृष्टि की प्ररूपणा आभिनिबोधिक ज्ञानी के समान है। इतनी विशेषता है कि साता वेदनीय के असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर संयोग केवली तक बंधक है, शेष अबंधक है। यही बात तो हमने वहां से पढ़ी थी अभी। अब वेदक सम्यक दृष्टियों में 5 ज्ञानावरण आदि पीत और पद्मलेशा में कही हुई प्रकृतियों के, क्योंकि वो पीत और पद्म भी 7वें गुणस्थान तक थे, वहां जो प्रकृति हमने कल देखी थी, तथा देवायु के असंयत समय दृष्टि से लेकर पीत पद्म में तो हमने आयु को छोड़ा था, क्योंकि आयु के बाद तीसरे में नहीं होती, इसलिए तीसरों को छोड़कर आयु का कथन अलग देखा था। परंतु यहाँ तो वेदक समय दृष्टि है, आयु का बंध तो होगा, तो देवायु को लेना यहाँ पर। असंयत समय दृष्टि से लेकर अप्रमत्त संयत तक बंधक है, अबंधक नहीं है। देवायु को इसलिए लेके 4थे 5वें 6ठे 7वें कोई भी देवायु बांध सकते हैं। इसलिए आप कहेंगे वेदक समय दृष्टि मनुष्य भी बांधेंगे ना, देव और नार की, हाँ तो उसकी बात अलग बताएंगे, वो केवल 4थे गुणस्थान में बंधेगी। हाँ, असाता वेदनीय दंडक, दंडक यानी भी 6ठे गुणस्थान में जो, हाँ, असंयत समय दृष्टि से प्रमत्त संयत तक बंधक है, शेष अबंधक। अप्रत्याख्यानावरण दंडक, अप्रत्याख्यानावरण दंडक कौन बताएगा कौन सा होगा? हाँ, यानी वो मनुष्य गति के वो औदारिक शरीर अंगोपांग वज्र वो सब ले लेना, तो 4था गुणस्थान वाला उसका बंधक है अप्रत्याख्यानावरण का। असंयत समय दृष्टि बंधक है, शेष अबंधक है। यानी देवनारकी 4थे गुणस्थान वाले उसको बांधेंगे, बाकी अप्रत्याख्यान तो मनुष्य 3 इंच भी बांधेंगे, पर 4थे में बांधेंगे। देखो नेक्स्ट पेज, वो उन्होंने आभिनिबोधिक ज्ञानावरण के समान वगैरह तो उसके लिए बताया था पहले, सम्यक दृष्टि के लिए। यहाँ तो हमको 7वें तक ही सोचना है। प्रत्याख्यानावरण 4 के असंयत समय दृष्टि और संयता संयत बंधक है, शेष अबंधक है। और आहारक शरीर और अंगोपांग के अप्रमत्त संयत बंधक है, शेष अबंधक है। 4थे 5वें 6ठे वाले बंध नहीं करेंगे। अब उपशम सम्य दृष्टि में सर्व प्ररूपणा आभिनिबोधिक ज्ञानी के समान है, क्योंकि उसके भी गुणस्थान कौन से, 4 से 11 तक है ना। इतनी विशेषता है, जहां उपशमक व क्षपक कहा वहां उपशमक जानना चाहिए, तथा साता वेदने के उपशांत कषाय तक बंधक कहना चाहिए। इतनी विशेषता और है कि इनके आयु का बंधन नहीं है। तो ये हमने इसमें से देख लिया। अभी हम 8वें पुस्तक में देख रहे थे, 365 तक तो हमने पढ़ लिया था। अभी आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी हमने उसमें से पढ़ा था ना, 367 पर एक सूत्र है, 283 नीचे एकदम, असाता वेदनीय दंडक जिसको कहा था हमने, यानी 6ठे गुणस्थान में जिसकी बंध विच्छित्ति होती है, तो उसके बंधक और अबंधक कौन है? तो उसका उत्तर 368 पर दिया है। असंयत समय दृष्टि से लेकर प्रमत्त संयत तक बंधक है, शेष अबंधक है। जो अभी हमने उसमें दंडक कहा था, यहाँ उसकी टोटल प्रकृतियां बता रही। देखो पेज नंबर 369 पर, अप्रत्यक्ष अनावरण क्रोधमान माया लोग। अभी मनुष्य संबंधी छह प्रकृतियां ली, मनुष्यायु, मनुष्य गति, औदारिक शरीर अंगोपांग, वज्रषभ सहन, नाला सहनन, मनुष्यानुपूर्वी। तो कहते असंयत समय दृष्टि बंधक है, शेष अबंधक है। नेक्स्ट पेज, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोक के कौन बंधक है, अबंधक है? तो चौथे और पांचवे वाले बंधक है, शेष अबंधक है। अब देवायु का कौन बंधक कौन अबंधक है? तो कहते कि असंयत समय दृष्टि से लेकर अपरमत्त संयत तक। परंतु हमने देखा था कि सातवें गुणस्थान में संख्यात बहुभाग तक ही बंधक है, ऊपर बाद में उसके बंधक नहीं। अभी आगे नेक्स्ट 372, आहारक शरीर और अंगोपांग के कौन बंधक अबंधक है? अप्रमत्त संयत बंधक अबंधक है, और अबंधक शेष अबंधक है। उपशम समय दृष्टि में भी हम पढ़ लेते। देखो उपशम समय दृष्टि जीवों में पांच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यश कीर्ति, उच्च गोत्र और पांच अंतराय का कौन बंधक है और कौन अबंधक है? अब देखो यहाँ तो गुणस्थान 11वें तक है। उपशम समय दृष्टि इन जनरल कहा उन्होंने, प्रथम उपशम द्वितीय उपशम भेद किए बिना सामान्य से औपशमिक कहेंगे तो चौथे से लेकर 11वें तक। तो कहते असंयत से लेकर सूक्ष्म सांप्रायिक उपशमक तक, उपशमक शब्द डालना क्योंकि क्षपक वाले के तो ये तो औपशमिक समय तो नहीं होगा ना, इसलिए उपशमक शब्द डालना आवश्यक है। और शेष अबंधक है, शेष में किसको लेना? लक्ष्मी, ग्यारहवें वाले को। ग्यारहवें वाले को बंधन नहीं, इसलिए शेष में ग्यारहवा चला गया। अब आगे देखते हैं, पेज नंबर 374 पर देखो, निद्रा और प्रचला का कौन बंधक कौन अबंधक है? क्योंकि इसके बंध विच्छित्ति के बाद उसके अबंधक कहलाएंगे। तो असंयत समय दृष्टि से लेकर अपूर्वकरण उपशमक तक बंधक है। अपूर्वकरण उपशम काल का संख्यात्वा भाग जाकर बंध विच्छित्ति होती है, क्योंकि पहले भाग में संख्यात्वा नहीं, सातवां भाग है ना, पहले भाग में बंध विच्छित्ति होती है। ये बंधक है और शेष अबंधक है। अब 375 पर सातावेदनीय के कौन बंधक कौन अबंधक है? तो असंयत समय दृष्टि से लेकर उपशांत कषाय वितराग छद्मस्थ तक बंधक है, इसमें अबंधक नहीं है कहीं। ग्यारहवें गुणस्थान तक हमने सभी कवर कर दिए। अब नेक्स्ट पेज 376 पर, वो असातावेदनीय का जो दंडक है हमने देखा था, उसके लिए चौथे से लेकर छठे तक बंधक है कहेंगे और शेष अबंधक कहेंगे। अब अप्रत्याख्यानावरण की प्ररूपना अवधि ज्ञानियों के समान है, इसमें आयु को छोड़ना है क्योंकि औपशमिक समय में आयु का बंधन नहीं होगा। वो आगे लिखा है नेक्स्ट पेज पर, विशेष इतना है कि उनके आयु कर्म का बंधन नहीं। फिर औपशमिक समय दृष्टियों में प्रत्याख्यानावरण चतुष्क का कौन बंधक कौन अबंधक है? तो चौथे पांचवें वाले बंधक है, बाकी अबंधक है। नेक्स्ट सूत्र देखो, पुरुष वेद और संज्वलन क्रोध का कौन बंधक है कौन अबंधक है? देखो चौथे से लेकर अनिवृत्तिकरण उपशमक तक बंध, यानी बहुभाग जाकर फिर बंध विच्छित्ति होती है क्योंकि अंतरकरण के बाद वेद का उदय है अभी, यानी अंतर ही होता है बहुभाग जाने पर, इसलिए कहते हम पहला भाग नहीं है, बहुभाग जाने पर उसका बंध विच्छित्ति होती है, बाद में वो अबंधक रहेंगे। अभी नेक्स्ट, फिर मान और माया का भी ऐसे लेना, और आगे आगे जो शेष बचा हुआ काल है उसका बहुभाग बहुभाग जाने पर बंधक की विच्छित्ति होती है। और लोक के लिए क्या कहेंगे? चौथे से लेकर दसवें तक बंधक है, सॉरी नौवे तक बंधक है, नौवे तक बंधक है और दसवें ग्यारहवें वाले अबंधक है। अब 379 पर हास्यरती भय जुगुप्सा का कौन बंधक कौन अबंधक है, तो चौथे से लेकर आठवें तक उपशमक तक, उपशमक शब्द डालना है। और फिर वो देवगति वाले जो उसमें आहारक उद्योग को छोड़ देना केवल, तो उसके बंधक कौन है, तो चौथे से लेकर हम कहेंगे वो आठवें में बंध विच्छित होती ना छठे भाग तक, तब उसके बंधक है और शेष अबंधक है। देखो नेक्स्ट पेज 380, आहारक शरीर और अंगोपांग का कौन बंधक कौन अबंधक है, अप्रमत्त और अपूर्वकरण उपशमक बंधक है और संख्यात बहुभाग जाने पर बंध विच्छित्ति होती है। अब हाँ फिर से अप्रमत्त और अपूर्वकरण उपशमक है क्या 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 उपशमक, श्रेणी वाले को उपशमक कहते हैं, प्रथम उपशम प्राप्त करने वाले को उपशमक संज्ञा नहीं है। सातवें गुणस्थान में तो प्रथम उपशम हो या द्वितीय उपशम हो बंद तो है ही, सवाल ही नहीं है, होता है ना। आहारक का बंध होने में कोई रुकावट नहीं है, आहारक का बंध तो बस सातवें गुणस्थान आठवें में हो सकता है। क्यों ऐसा प्रश्न क्यों पूछा, अरे संख्यात बहुभाग प्रथम उपशम के लिए नहीं लगा रहे हैं। फिर सुनो, उपशमक शब्द होता है वो श्रेणी के लिए आता है, प्रथम उपशम के लिए नहीं आता। ये सामान्य से सातवें गुणस्थान प्रथम उपशम वाला बंध करेगा, क्योंकि प्रथम उपशम काल में सातवां छठवां सातवां छठवां हजारों बार होता है, वहां तो बंध होगा। दूसरी और कहां होगा, श्रेणी चढ़ने वाले उपशमक का भी बंध होगा, कहां तक होगा, आठवें के जो संख्यात बहुभाग में जहां देवगति वगैरह की बंध विच्छित्ति होती है वहां तक उसका छठे भाग तक बंध है, इसलिए संख्यात बहुभाग। ये संख्यात बहुभाग ये विशेषण है वो आठवें के लिए लगाया, अपूर्वकरण उपशमक के लिए संख्यात बहुभाग कहा, सातिशय वो अप्रमत्त कहो या अप्रमत्त केवल कह दिया, उसमें लिए संख्यात बहुभाग शब्द नहीं लगाना है। आप ऊपर ऊपर की सब हाईएस्ट चीजें जानते हो ना, बेसिक चीजों में तकलीफ होती है आपको, है ना। देखो क्या कहा, देखो अप्रमत्त और अपूर्वकरण उपशमक, ये उपशमक शब्द अपूर्वकरण के लिए लगाया है और आगे संख्यात बहुभाग किसके लिए लिखा है, अपूर्वकरण उपशमक काल के संख्यात बहुभाग जाकर बंध विच्छित्ति होती है, वहां फिर अप्रमत्त का नाम नहीं लिया है। ये हमने पढ़ा था ना इसमें से उपशम समय दृष्टि के बाद वहां ज्यादा हाँ हमने तो शॉर्ट में देखा था, क्योंकि अभिनिबोधिक ज्ञान के और जहाँ उपशमक कहना चाहिए वगैरह वगैरह करके हमने लिखा था। अब यही पुस्तक में ही देख लेते 380 पर सासाधन सम्यक दृष्टियों की प्ररूपणा मत्य ज्ञानियों के समान है। मत्य ज्ञानियों के मत्य अज्ञानी के तो पहला और दूसरा दो गुणस्थान, पर यहाँ एक ही गुणस्थान है, तो हम कहेंगे अबंधक नहीं है ऐसा, जितने बनते वो बंधक है अबंधक नहीं है। 16 को क्यों निकालना, हाँ यानी दूसरे गुणस्थान में बंधने वाले जो प्रकृतियां है ना, तो यहाँ हाँ उसके बंध बंध है ऐसा कहेंगे। हाँ यहाँ लिखा है देखो, सासाधन समय दृष्टियों की प्ररूपणा मत्य ज्ञानियों के समान है, यहाँ एक स्थानिक प्रकृतियां नहीं है। एक स्थानिक है ने पहले गुणस्थान में जो मध्य विच्छित्ति होती है उसको एक स्थानिक कहते हैं। पहले गुणस्थान में जिनका बंध होता है उसको एक स्थानिक कहते हैं, और पहले और दूसरे दोनों गुणस्थान में जो बनती है उसको द्विस्थानिक कहते हैं। आगे त्रिस्थानिक चतुर्स्थानिक ऐसा कोई वहां शब्द नहीं आता है, पहले दो के लिए एक स्थानिक द्विस्थानिक ये दो शब्द आते हैं। हाँ यहाँ तो आहार द्वीप और तीर्थंकर बनती नहीं है, तीन 117 हुई और उसमें से 16 की तो बंधे विच्छित्ति हुई है पहले में, वो भी यहाँ बनती नहीं है। तो जो बनती है
उसका
वो तो सभी बंधक है, अबंधक नहीं है। सम्यक मिथ्या दृष्टियों की प्ररूपणा असंयत के समान है। असंयत पर यहाँ आयु का बंध नहीं है, यहाँ जितनी बनती है तो यहाँ सारे बंधक है, अबंधक नहीं है, ऐसे ही कथन होगा। बंधने वाली प्रकृतियों को कहना है यहाँ पर, यानी वो 16 और 25 के बंधे विच्छित्ति हुई है और दो आयु भी नहीं बंधेगी। हाँ, वो तो पहले ही निकाल दिया ना। मिथ्या दृष्टि की प्ररूपणा अभव्य के समान है, यानी मिथ्या दृष्टि है तो पहले गुणस्थान में 117 बनती है, तो सारे बंधक है अबंधक नहीं है, ऐसा कहेंगे वहां पर। अभी हम 8वें पुस्तक में भी देख लेते हैं, देखो मिथ्या दृष्टि अभव्य सिद्धि के समान है, ये तो हो गया अपना। अभी संगी मार्गणा की बात पढ़ेंगे यहाँ पर, महाबंध में पढ़ लेते पहले। पेज नंबर है 55, दो तीन लाइन सभी पढ़ लेते हैं, संगी असंगी की और आहार मार्गणा। भव्य की तो हमने अभी देख ली है, देखो संगी मार्गणा। संगी जीव के 1 से 12 पर्यंत गुणस्थान कहे गए हैं, क्योंकि जब जीव समास कहते हैं तो संगी पंचेंद्रिय के 14 गुणस्थान होंगे, परंतु मार्गणा में जब हम संगी असंगी कहेंगे तो 12वें गुणस्थान तक ही लेना है। यहाँ 120 का बंध होता है। असंगी के प्रथम तथा द्वितीय गुणस्थान होते हैं, ये दूसरा गुणस्थान भी एक मत से सांसाधन में मरकर पर्याप्त जीवों में उत्पन्न होता है उसकी अपेक्षा से लिया है, परंतु वो सर्वत्र मान्य नहीं है। यहाँ तीर्थंकर तथा आहार द्विक के बिना 117 का बंध कहा गया है। अभी असंगी में जो वैकिरिक शटक वगैरह लेते हैं तो असंगी पंचेंद्रिय को बनता है, इसलिए ले जाए। आहार मार्गणा, यहाँ 1 से 13 गुणस्थान होते हैं, क्योंकि 14 अयोगी है, अनाहारक है, 120 प्रकृति का बंध होता है। अनाहारकों के प्रथम द्वितीय चतुर्थ 13वें गुणस्थान कहे गए हैं। यहाँ 4 आयु आहारक युगल नरक द्विक के बिना 112 का बंध है। अब ये हम 8वीं पुस्तक में से पढ़ लेते पहले। देखो पेज नंबर 386 पर थे हम, संगी मार्गणानुसार नीचे है, देखो 320 नंबर का सूत्र। संगी मार्गणानुसार संगी जीवों में तीर्थंकर प्रकृति तक ओघ के समान प्ररूपणा है, परंतु विशेषता इतनी है कि सातावेदनीय की प्ररूपणा चक्षु दर्शनी जीवों के समान है, क्योंकि चक्षु दर्शनी वाले भी 12वें गुणस्थान तक हमने देख लिए थे, वैसे यहाँ पर भी प्ररूपणा ले लेना है। अभी असंगी जीवों में बंध उदय आदि की प्ररूपणा अभव्य सिद्धि जीवों के समान है। गुणस्थान पहला है इसलिए अभव्य सिद्धि के उनके समान वो प्ररूपणा हो जाती है, यानी यहाँ जो बंधने असंगी है ना, पहला गुणस्थान है यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ जो बनती है उसके 117 का ही बंध है, यानी अबंधक नहीं है, ऐसा कहेंगे हम वहां पर। क्योंकि संगी कहने से असंगी कहने से पहले से असंगी पंचेंद्रिय तक सब आ गए। अब आना 390 पेज पर, ये संगी असंगी की हो गई प्ररूपणा। अब आहारक अनाहारक 390 पेज है। आहार मार्गणानुसार मिला क्या, आहारक जीवों में ओग के समान प्ररूपणा है। परंतु उसमें तो सातावेदनीय के लिए अबंधक नहीं है कहना पड़ेगा। पर ओघ में क्या कहते हैं हम, शेष अबंधक ऐसा आता है कि नहीं? यहाँ एक्चुअली उनकी प्रत्यय उनकी प्ररूपना चल रही, इसलिए ओघ के समान कह दिया। हमारा बंध विषय में हम केवल कौन बंधक अबंधक इतनी चर्चा करते हैं, आठवें पुस्तक में उसके कौन कौन से प्रत्यय है उसकी बात चल रही, इसलिए वहां तो विशेषता में ये बताया कि कारमान प्रत्यय वहां नहीं है, कारमान का योग को नहीं लिया है आहारकों में, क्योंकि वहां चर्चा जुदी थी, हमारी चर्चा थोड़ी जुदी है। यानी हम डिफरेंस कहाँ होगा आहारकों में, जैसे दसवें गुणस्थान तक वो बंद वाली ज्ञानावरण दंडक तो कहेंगे, और फिर जो सातावेदनी के लिए क्या कहते हैं, तेरहवें तक बंधक है बाकी अबंधक है ऐसा ओघ में कहते हैं, यहाँ क्या कहेंगे हम, सभी बंधक है कहेंगे, अबंधक नहीं है कहेंगे, क्योंकि इसमें चौदहवें गुणस्थान को लिया ही नहीं है आहारकों में। और अनाहारक जीवों में कारमान का ये योग के समान, क्योंकि वहां अनाहारक कहने से एक्चुअली कारमान का योग में गुणस्थान पहला दूसरा चौथा और तेरहवा है, परंतु अनाहारक में वो तेरहवें को भी थे है ना, यहाँ चौदहवें को भी लेना है, अनाहारक है ना चौदहवा गुणस्थान। हाँ कहेंगे ना उसमें अबंधक भी है वहां पर। अब यहाँ तो चर्चा अलग दृष्टि से की है, अभी हमने क्या लिखा है जरा देख लेते हैं। ऐसा ही लिया कारमान का योगी के समान प्ररूपना है, गुणस्थान उसके समझना है, आहार मार्गणा में आहार में ओक के समान प्ररूपना है, सातावेदनी में अबंधक नहीं है ऐसा कहना पड़ेगा। बाकी तो ओक के समान ही है
ना,
अबंधक नहीं है। हाँ क्योंकि तेरहवें तक आहारक है वहां तक सभी बंधक है, अनाहारक में कारमान योगी का योगी के समान प्ररूपना है, यानी चौदहवें गुणस्थान को लेना है। पर वहां पर भी ऐसी प्ररूपना की है धवला में भी, परंतु ये और सूक्ष्म हमको ख्याल में लेना चाहिए। अब हम अपने ये तो आठवें पुस्तक का कार्य हो गया अपना, दोबारा नहीं लाना है, आज आप ले जा सकते। अभी हम निकालते अपना पेज, देखो 55 पेज निकालना है आपको। ये यहां तक तो उनकी जो प्ररूपना उन्होंने की थी ना, ये कहां से शुरू त्रुटि दंश चालू हो गया था 48-49 तक, कहां तक देखो 49 पेज पर, तीरंच पंचेंद्री तीरंच वगैरह की प्ररूपणा करके वो त्रुटि तंश शुरू हुआ। यानी ये कौन सा विषय चल रहा था, बंध स्वामित्व विषय संबंधी जो चल रहा था ना मार्गनाओं में, बंध स्वामित्व विषय के बाद क्या क्या आता है उसको देख लेते हैं यहाँ पर। ये पेज नंबर 8 पर हमने लिखा है, देखो अभी ये जो काल प्ररूपना शुरू हुई ना कहाँ पर, 55 पेज पर। तो काल प्ररूपना के शुरुआत का एक पैराग्राफ ब्रैकेट का पढ़ लेते हैं हम, यहाँ क्या लिखा देखो, ताड़ पत्र नंबर 28 नष्ट हो जाने के कारण इस प्ररूपना का प्रारंभिक अंश भी विनष्ट हो गया है। प्रकरण को देखते हुए ज्ञात होता है कि यहाँ आदेश की अपेक्षा नरक गति का वर्णन चल रहा है और ओग का वर्णन नष्ट हो गया है। और ये काल प्ररूपणा ने एक जीव की अपेक्षा काल की बात है, क्योंकि स्वामित्व कहो समुत्कीर्तना स्वामित्व, इसमें तो पहले में पहले एक जीव की अपेक्षा ही बात आती है, बाद में आगे चलकर नाना जीवों की बात आई है, तो देखो अभी यहाँ हमने कुछ लिखा है शुरुआत में, उससे पढ़ते हैं। यानी ये एक जीव की अपेक्षा काल की परंपरा चल रही है। देखो पेज नंबर 8 है, हमने जो पुस्तक बनाई उसमें 8 नंबर का पेज ब्रह्मा, ये नई जो पुस्तक बने उसमें 8 नंबर को निकालना, वहां हम पढ़ते हैं, आप जरा सुनना बराबर। कालानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग से ध्रुवबंदी प्रकृतियों के 3 भंग है। ध्रुवबंदी किसको कहते हैं? जो अनादि से बनती है, जब तक बंध विच्छित्ति नहीं होती तब तक जो बनती रहती है उसको ध्रुवबंदी कहते हैं। कितनी होती है? 47 से। हमने देखा ज्ञानावरण की 5 है, दर्शनावरण की 9 है, अंतराय की 5, वो 19 हो गए। मोहिनी की 19, मिथ्यात्व 17, 16 कषाय और भैजुगुप्सा, और 9 जो है नाम कर्म की है। कौन कौन सी है? हाँ, तेजस कारमान, वर्ण गंध रस स्पर्श, अगुर लघु, उपघात और निर्माण, ये 9 है। तो ये ध्रुवबंदी है, अपनी अपनी बंध विच्छित्ति तक बनती रहती है। अब उसमें 3 भंग होते हैं। कैसे? अनादि अनंत। अब जो अभव्य है या जो भव्य होते हुए भी कभी सम्यक तो नहीं प्राप्त करेगा, तो उसके तो बंध विच्छित्ति होगी नहीं, तो अनादि अनंत भंग होगा, बनती रहेगी। दूसरा कौन सा है? अनादि शांत। अनादि शांत क्यों? अभी ऊपर के गुण स्थानों में गया है, बंध विच्छित्ति हुई है, इसलिए अनादि शांत हो गया। तीसरा भी है सादि शांत, क्योंकि जहां जहां बंध विच्छित्ति होती है वहां ऊपर के गुण स्थान में जाकर फिर नीचे लौटा है, तो सादि शांत हो गया। इसलिए ध्रुवबंदी में 3 भंग हो गए, अनादि अनंत, अनादि शांत और सादि शांत। यहां सादि शांत काल का कथन है। अब देखिए 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, मिथ्यात्व, 16 कषाय, भय जुगुप्सा, तेजस शरीर, कारमान शरीर, वर्ण चतुष्क, अगुर लघु, उपघात, निर्माण और 5 अंतराय का जघन्य बंधकाल अंतर्मूर्त। अभी काल की बात है, हम जघन्य बंधकाल सादी की बात है। सादी का अर्थ वो बंध विच्छित्ति होकर फिर नीचे आया और फिर वो ऊपर चढ़ गया, तो मिनिमम काल कितना होगा? तो अंतर्मूर्त। जैसे हमने देखा नव मिथ्या तो मैं आया वापस लौट कर, या 5 ज्ञानावरण के लिए भी कैसा लेना है? श्रेणी चूतरा, फिर बांधा, फिर श्रेणी चढ़ा, तो अंतर्मूर्त तक ही बंद किया। यह है उसका सादी शांत बंध काल। अंतर नहीं देख रहे हम, बंध काल देख रहे। और उत्कृष्ट बंध काल अर्ध पुद्गल परावर्तन है, क्योंकि मिथ्या तो मैं अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक रहा, वो बाद में जाकर सम्यक तो प्राप्त करके बंध विच्छित्ति कर दी। समझ में आई ये बात लक्ष्मी जी? पहले बंध विच्छित्ति की थी, फिर नीचे के गुण स्थानों में आया है और फिर ऊपर चढ़ा अंतर्मूर्त में, तो बंध काल अंतर्मूर्त हुआ, और नीचे मिथ्यात्व में ही रहा लगातार, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक रहा। अब साता वेदनी असाता वेदनी, अब ये कैसे है परिवर्तन? हाँ, वो तो लौट लौट कर एक एक अंतर्मूर्त में तो बंदगी। स्त्री वेद, नपुसक वेद, हास्य रति और रति शोक, ये लगातार बंध काल कितने तक हो सकता है ये देखना है हमको। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, 4 जाति, आहारक द्विक, 5 संस्थान। देखो 4 जाति को लिया, पंचेंद्रिय जाति को नहीं लिया, क्योंकि पंचेंद्रिय जाति का भले मिनिमम काल अंतर्मूर्त होगा, पर मैक्सिमम काल जब तक वो सम्यक में रहा, नरक में रहा या भूमि में रहा, तो उसका बहुत लंबा काल हो जाएगा। हमने देखा ना, छठे नरक से निकला, फिर 2 शास्त्र सागर रहा, फिर द्रव्यलिंगी में गया, इस तरह से उसको हम सोच सकते हैं। इसलिए इन प्रकृतियों को छोड़ा, जो सम्यक होने पर लगातार बनती है उनको छोड़ा है। ये मिनिमम और मैक्सिमम उनको बताना है, इसलिए ये अलग से प्रकृतियां लिए। देखो आरग द्विक तक पढ़ा था ना, 5 संस्थान, 5 सहनन, आतप उद्योत, अप्रशस्त विहाय गति, स्थावर आदि 4। उसका अर्थ है स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त। ये बंद की बात चल रही, उदय की नहीं। स्थिरादि 3 युगल, यानी उसमें से स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, यश कीर्ति और अयश कीर्ति, फिर दुर्भग दुस्वर अनादेय, इनका जघन्य बंधकाल एक समय है और उत्कृष्ट बंधकाल अंतर्मूर्त है। यानी अंतर्मूर्त में तो नियम से पलटेगा ही पलटेगा, अपन कभी ऐसा भी हो सकता है एक समय के लिए बंधा और रुक गया, ये हो सकता है। यानी ऐसे एक एक समय में ऐसे नहीं, एक समय साता बांधी, एक समय असाता बांधी, फिर एक समय, ऐसा कभी नहीं होगा, परंतु एक समय के लिए बंधकर वापस से लौट सकता है। तो उसका जगन्य बंधकाल एक समय, उत्कृष्ट बंधकाल अंतर्मूर्त। 9 नंबर पेज पर पढ़ रहे हैं ना हम। हाँ भाई, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं आपको। हाँ, तो सोचना केवल जरा। हाँ, अरे है ना आपके पास, देवेंद्र की पुस्तक है उनके पास, दे देना। देखो 9 नंबर निकालना पेज, वो तो आपको समझ में है ना, अनादिशांत सादिशांत, वो बंध प्रकृति बंध लगातार कितने समय तक होता है, विशिष्ट प्रकृति बंध लगातार कब तक चलेगा, ये बात यहाँ चल रही है। जैसे ज्ञानावरण का बंध लगातार चलता है ना, कहाँ से पहले से 10वें तक चले, पर कोई 11वें में गया और वापस नीचे आया, नीचे आए तो 10, 9, 8 करते करते फिर श्रेणी चढ़ा, तो अंतर्मूर्त के उसने मिनिमम मानदा है उसका अर्थ है सादी शांतकाल अंतर्मूर्त। अंतर बाद में देखेंगे हम, ये काल की प्ररूपना है, अंतर के लिए भी कहेंगे जब तक ऊपर है तब तक अंतर है, पर यहाँ बंध लगातार कितने समय तक है मिनिमम उसकी बात है। ज्ञानावरण में एक समय वगैरह नहीं कहा है, ये जो प्रतिपक्षी प्रकृतियां है ना उसमें एक समय होता है, और प्रतिपक्षी प्रकृतियों में जो सम्यक तो होने पर लगातार बनती उसको छोड़ दिया, बाकी प्रतिपक्षियों को लिया। फिर से देखो ये प्रतिपक्षी प्रकृति सात, हाँ नहीं उसमें नहीं लिखेंगे कुछ, हाँ कोई करेक्शन होगा तो लिखना, बाकी कुछ नहीं। हाँ हाँ, साता असाता देखो, ये मैं फिर पैराग्राफ पढ़ रही, साता असाता है ना, नपुसक वेद, स्त्री वेद नपुसक वेद, क्योंकि पुरुष वेद को नहीं लिए ना, क्योंकि समय दर्शन होने पर वो लगातार बनती रहेगी, तो उसका कथन अलग से कहेंगे। ये सब प्रकृतियों के जघन्य समय एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है, अंतर्मूर्त से लगातार अधिक कभी नहीं बंधेगी, ये उसका अर्थ होता है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि ये दुर्भग आदि बांधेगा, परंतु वो सुभग भी बंधेगा ही बंधेगा अंतर्मूर्त में लौट कर, ये उसका अर्थ होता है। तो हास्यरति अरति शोक, नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी। अब देखो यहाँ तीर्यज गति को छोड़ा, क्योंकि तीर्यज गति का लगातार बंध वो अग्नि का एक वायु का एक वो लंबे काल तक करेंगे, इसलिए वहां असंख्यात लोग वहां कहेंगे। ये ऐसी प्रकृतियां ली कि जिनका कथन एक साथ हो सकता है। मनुष्य गति को छोड़ा, क्योंकि वो तो 33 सागर वाले तो लगातार मनुष्य गति का बंध कर रहे हैं, उत्कृष्ट काल अलग होगा उनके लिए। और देवगति का बंध, ये पूर्व कोटि का बंथड़ और 3 पल्ले तक लगातार देवगति का बंध करता रहेगा, इसलिए इनको छोड़कर नरक गति को लिया। आप कहेंगे मिथ्या दृष्टि नरक गति को बांधता है, पर वो कभी लगातार अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं बांधेगा। मिथ्या दृष्टि है तो लौट लौट कर वो तो चारों गतियों का बंध करेगा ही करेगा, अंतर्मूर्त तक करेगा ही। ऐसा भी हो सकता है कि परिणाम के वश एक समय के लिए बंद कर फिर वापस दूसरे परिणाम पलट जाए, हो सकता है। इसलिए इन सबके लिए क्या लिखा है देखो लास्ट में, स्थावर आदि और स्थिर आदि में भी 3 युगल लिए, 3 युगल में स्थिर भी अस्थिर भी ऐसा लेना है। वो दुर्भग दुस्वर अनादे का जगन बंद काल एक समय उत्कृष्ट अंतर्मूर्त, यहां तक तो अपना हुआ था। अब पुरुष वेद का ऊपर जिसको जिसको छोड़ा है, परंतु फिर भी प्रतिपक्षी पहले तो ध्रुवबंदी का कह दिया उन्होंने, अब यह जो ध्रुवबंदी नहीं है उसकी बात चल रही है, उसमें से पुरुष वेद का ये जब है ना उसका एक जीव की अपेक्षा काल, ये बहुत प्रकृति बंध का लगातार काल आगे चलकर बहुत काम आने वाला है। कब स्थिति बंध में भी और अनुभाग बंध में भी, जहां तक प्रकृति बनती है उसका हमेशा विचार होगा वहां पर। तो यहाँ कहते हैं कि पुरुष वेद का जगन्य बंध काल एक समय, जैसे स्त्री वेद और नपुसक में देखा वैसा ही, एक समय के बाद फिर स्त्री वेद नपुसक वेद बांधा, ये हो सकता है। और उत्कृष्ट बंध काल साधिक 266 सागर, साधिक में कैसे लिया, अंतर्मूर्त प्लस 266 सागर। अंतर्मूर्त क्यों लिया, हमने देखा था कि प्रायोगिक लब्धि में ही स्त्री वेद और नपुंसक वेद वो बंध रुक जाता है, यानी सम्यक तो होने के अंतर्मुहूर्त पहले ही, और फिर औपशमिक होगा और फिर वो तो औपशमिक सम्यक दृष्टि होगा, तो 266 सागर तक रह गया, प्लस पूर्व कोटि है, यानी बाद में उसने क्षय कर लिया, 266 सागर तक वो सम्यक दृष्टि यानी शोक्षम सम्यक दृष्टि रहा, फिर वो मनुष्य में अंतिम भाव उसने धारण किया और 8 साल के बाद क्षयिक भी प्राप्त किया।
एक
वो चार पूर्व कोटि यहाँ उसको नहीं लिया हमने, कहीं कहीं उसकी भी बात आती है, बीच बीच में एक एक पूर्व कोटि लिए, हाँ लिया था, परंतु सामान्य से वो अंतिम पूर्व कोटि लिया यहाँ पर, उसको क्षायिक बनाए वहां पर, बीच में वो 266 सागर में ही उनको वो तो कभी कभी दो पद्धति से कथन आता है, बीच वाली जो पूर्व कोटि है वो 66 सागर के अंतर्गत ही ले लेते हैं, ऐसा भी कथन आता है, और हमने देखा कि अलग से भी कथन उन्होंने चार पूर्व कोटि भी लिया हुआ है, तो साधिक में ये सबको इंक्लूड कर सकते हैं। ये पुरुष वेद का लगातार उत्कृष्ट बंध कितने काल तक, जब तक समय दृष्टि रहेगा तब तक तो उसको तो पुरुष वेद का ही बंध होगा, ये कहना चाहते हैं। तीर्यंच गति, तीर्यंच गत्यानुपुरी और नीच गोत्र का जघन्य बंध का लेख समय, ये सब कैसी प्रकृतियां है तो प्रतिपक्षी है, तो उनका जघन्य बंध का लेख समय संभव है, और उत्कृष्ट बंध काल असंख्यात लोक है। क्यों असंख्यात लोक? अग्नि का एक और वायु का एक जीव तो मात्र तीर्यंच गति का ही बंध करते हैं, तो उसमें रहने का लगातार कितना काल है, तो असंख्यात लोक ये काल का माप है, इतने काल तक असंख्यात लोक में जितने प्रदेश है उतने समयों को गिनना है यहाँ पर, वो बहुत लंबा काल हो जाता है। देवगति देवगत्यानुपूर्वी, ऊपर रह गया, मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी, वज्रषभ नाराज सहनन का जघन, यहाँ औदारिक शरीर अंगोपांग को छोड़ाया, जघन्य बंधकाल एक समय और उत्कृष्ट बंधकाल 33 सागर है, क्योंकि देव में जो 33 सागर वाला देव है समय दृष्टि है और वो लगातार मनुष्य गति का ही बंध कर रहे हैं, औदारिक शरीर अंगोपांग भी बांध रहे, परंतु उसकी बात अलग से बताएंगे। यानी इसमें औदारिक अंगोपांग ले सकते हैं हम, पर औदारिक शरीर को नहीं लेंगे, क्यों? औदारिक शरीर का काल लगातार बंध काल जो एक इंद्रियों में लगातार रहता है वो औदारिक शरीर का ही बंध कर रहा है, क्योंकि वो देवगति नरगति बांधता ही नहीं है, तो उसके औदारिक शरीर बंधेगा पर अंगोपांग लगातार नहीं बंधेगा। वो जब जब एक इंद्रिय जाति बांध रहा है तो औदारिक शरीर तो बांध ही रहा है, द्विंद्रियादि जाति बांध रहा है तो औदारिक शरीर के साथ अंगोपांग भी बांध रहा है, और अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में लौट कर वो अंगोपांग का बंध करेगा या नहीं करेगा, करेगा या नहीं करेगा, इसलिए अंगोपांग के लिए तो 33 सागर को ही लेना है। वो नीचे लिखा है अलग से, औदारिक शरीर के साथ अंगोपांग की चर्चा वहां लिखी है। देवगति देवगत्यानुपूर्वी वैक्रिक शरीर वैक्रिक अंगोपांग का जघन्य बंध का लेख समय, क्योंकि वो प्रतिपक्षी है। उत्कृष्ट बंध का साधिक तीन पल्ले, अभी साधिक तीन पल्ले ने तीन पल्ले वाले देवता है सॉरी जीव भोग भूमि के जो है वो तो देवगति का ही बंध करते हैं, परंतु जो सम्यक्त्व के साथ जन्मे हैं वो पहले समय से करेंगे। अब सम्यक्त्व लेकर वहां गए हैं तो यहाँ पर भी सम्यक्त्व थे तब वहां सम्यक्त्व लेके गए हैं, तो क्षायिक सम्यक्त्व लेके गए हैं, तो उन्होंने जब से देवायु बांधी है और फिर सम्यक्त्व प्राप्त किया, यानी वो पूर्व कोटि के वन थर्ड बाकी रहा तब उसने पहले में पहले भोग भूमि के देवाई ने भोग भूमि की आयु बांधी और फिर वो सम्यक दृष्टि हुआ। पहले मनुष्य आयु बांधी फिर सम्यक दृष्टि हुआ, सम्यक दृष्टि हुआ तो क्षायिक कर दिया, अकेले सम्यक तो हुआ तो देवगति का बंध शुरू हुआ, क्षायिक किया क्योंकि क्षायिक किए बिना वो भोग भूमि में सम्यक को लेकर नहीं जा सकता, इसलिए वन थर्ड पूर्व कोटि और वहां का पूरी तीन पल्ले, अकेले तीन पल्ले को लेते और मिथ्या दृष्टि को लेते तो पहले एक अंतर्मुहूर्त जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं होती तो वहां मनुष्य गति तीर्यंच गति का भी बंध होगा उसको, और बाद में देवगति का बंध करेंगे, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव अपर्याप्त अवस्था में देवगति का बंधन नहीं कर सकता। इसलिए भोग भूमि में भी अपर्याप्त अवस्था में अगर मिथ्यात्व के साथ जाएगा तो देवगति का बंधन नहीं हो सकता उसको। इसलिए वहां यहां से सम्यक्त्व के साथ ले जाना है, तो वो तो क्षय की कंडीशन है। इसलिए इतना बड़ा लंबा हमने बढ़ाया। देखो ये देवगति वगैरह प्रकृतियों का उत्कृष्ट बंध काल कितना है, तो साधिक तीन पल्ल्य। साधिक तीन पल्ल्य में ये बात आ गई, पर हमें समझने के लिए ब्रैकेट में लिख दिया है 1/3 पूर्वकोटि प्लस तीन पल्ल्य। एक क्षायिक समय दृष्टि की अपेक्षा बात बताई। अब पंचेंद्रिय जाति
प्राप्त करता है 8 वर्ष के पश्चात।
हाँ, जो जिस मनुष्य ने एक क्षायिक समय तो प्राप्त किया
वो तीन पल्ले की आयु बांध सकता है ना?
आप बोलो, समय दृष्टि जीव कौन सी आयु बांधेगा? क्योंकि उसने 8वें साल में आपने क्षायिक प्राप्त किया। देखो देखो, भोग भूमि की आयु बांधने वाला तो मिथ्या दृष्टि ही होता है, भले वो मनुष्य हो या तिर्यंश। क्या सुना अभी, क्या बताया मैंने? क्या बताया अभी? भोग भूमि की आयु मिथ्या दृष्टि ही बांधता है, भले वो तिर्यंश हो या मनुष्य। बाद में सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, सम्यक तो लेकर वहां जा सकता है, वो क्षायिक हो तो हाल में। पर जिस तिर्यंच ने भोग भूमि की आयु बांधे वो तो क्षायिक होने का चांस नहीं, क्योंकि वो मनुष्यों के ही क्षायिक हो सकता है, तो मिथ्या तो में ही वहां जाएगा। हाँ, वहां जाने के बाद वो सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। हाँ, वो मिथ्या दृष्टि रहे तो भी देवगति बांधेगा पर्याप्त होने पर, उसके लिए उसको सम्यक तो की कंडीशन नहीं है। हाँ, भोग भूमि के सभी जीव, अभी वो पहला छोटा एक अंतर्मुख छोड़ दो, लगातार देवगति का ही बंध करते, क्योंकि उनकी तीन शुभ लेशाएं होती है, पित्त पद्म और कापोत, और मिथ्यात्व के साथ जन्मने वाले के कापोत लेशा है, वो अंतर्मूर्त के लिए वो उसमें से वो तो अन्य गति भी बांध सकता है। फिर से यहाँ आते हैं। देखो ये तो हमने देवगति की बात पढ़ ली, पंचेंद्रिय जाति को पढ़ना है अभी। पंचेंद्रिय जाति परघात उच्छ्वास त्रस चतुष्क का नहीं है, पर्याप्त पंचेंद्रिय पर्याप्त के ही आयु बांधने वाले ऐसे जीव हमको सोचना है। जघन्य बंध का लेख समय, क्योंकि ये प्रतिपक्षी प्रकृति है, वैसे परघात उच्छ्वास प्रतिपक्षी नहीं है, परंतु फिर भी वो बंधी तो एक समय के लिए बन सकती है, ऐसी प्रकृति है। और उत्कृष्ट बंध काल 185 सागर है। अभी कौन बताना चाहते 185 सागर? पहले आप लोगों को चांस। हाँ, हाँ 31 है, 66 दो बार लेना ना। हाँ तो
132
देखो देखो कैसे लेना है। नारकी सब पंचेंद्रिय जाति बांधते हैं और वो पर्याप्त का ही बंध करते हैं, यानी ये सभी बातें, ये सभी तो उनके बंधेगी ही बंधेगी, तो हमको नरक में से सम्यक्त्व के साथ लाना है, इसलिए 7वें नरक का कोई उपयोग नहीं है, तो हम 6ठे नरक की बात करेंगे। 6ठे नरक में 22 सागर तक रहा और अंत में जाकर अंतर्मूर्त बाकी था, तब उसने सम्यक्त प्राप्त किया, सम्यक्त के साथ मनुष्य में आया और 266 सागर तक सम्यक्त ही रहा, और वो ग्रहवेग में जाकर उसको मिथ्या दृष्टि हो गया, ऐसा हम ले लेंगे। और वहां ग्रहवेग में लगातार पंचेंद्रिय जाति जो 31 सागर तक रहा वो अंतिम ग्रहवेग में, तो उसने लगातार तो ये सभी को बांधा ही बांधा, तो पहले 22 सागर हमने देखे थे, फिर 2 बार 66 लाना है और फिर 31 सागर, उसकी टोटल कितनी होगी? हाँ मिथ्यात्व में, क्योंकि उसकी लिमिट हो गई अभी 266 सागर की, इसलिए तो मिथ्यात्व में जाएगा, पर 31 सागर तक पंचेंद्रिय जाति ही बांध रहा है वो, क्योंकि मनुष्य गति ही बांध रहा है वो, तो इसकी टोटल कितनी होती है देखो। हाँ 185, ये सब सागर है। औदारिक शरीर का जगन्य बंध काल एक समय, क्योंकि प्रतिपक्षी प्रकृति तो है ही है। और उत्कृष्ट बंध काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल जो अनंत काल है, क्योंकि जो एकेंद्रिय में लगातार अनंत पुद्गल परावर्तन काल तक रहते हैं उनके दो ही गतियां बनती, तीरंज गति और मनुष्य गति। तो वो तो औदारिक शरीर तो बंधेगा ही बंधेगा, पर जब वो एकेंद्रिय जाति बंध रहे हैं तो अंगोपांग नहीं बंधेगा, शरीर तो बंधेगा ही बंधेगा। यहाँ औदारिक अंगोपांग की चर्चा ली। देखो, औदारिक अंगोपांग का जघन्य बंध काल एक समय और उत्कृष्ट बंध काल साधिक 33 सागर। तो साधिक 33 सागर में यहाँ देव को नहीं लिया, ऊपर हमने देव को लिया था ना, मनुष्य गति वगैरह को, और आप वहां अंगोपांग डालना चाहते थे, वो तो केवल 33 सागर है और यहाँ साधिक 33 सागर है, क्योंकि नरक में उसने लगातार तिरंज गति बांधी, ऐसा जीव लेते हम। सम्यक भी हुआ फिर भी मनुष्य गति में उसने औदारिक शरीर अंगोपांग तो बंद किया ही किया, और वहां से निकला जिस तिरंज में गया है वो अंतर्मूर्त काल तक तो देवगति बांध नहीं सकता, नरक गति बांध नहीं सकता, तो वो क्या बांधेगा, मनुष्य तिरंज गति बांधेगा, तो वो अंतर्मूर्त बढ़ा देना इसमें। इसलिए सातवां नरक प्लस पश्चात एक अंतर्मूर्त, इसमें साधिक 33 सागर हो गया उसका, और ऊपर मनुष्य गति के लिए केवल 33 सागर लिया था, है ना, इसलिए इसको अलग से बताया। अब इस पुस्तक के 10वें पेज पर आना। देखो, समचतुर्थ संस्थान प्रशस्त विहाय गति सुभग सुस्वर आदेय और उच्च गोत्र का जघन्य बंध काल एक समय, क्योंकि वो तो मिथ्या दृष्टि के जो प्रतिपक्षी प्रकृतियों के साथ इनका एक समय का बंध हो सकता है, और उत्कृष्ट बंध काल कुछ कम तीन पल्य अधिक 266 सागर। देखो ये कैसे सोचना है, कुछ कम तीन पल्य इसलिए लिया है कि उसके जो पहला अंतर्मूर्त है उसमें तो वो तो अन्य का भी बंध कर सकता है, अन्य संस्थान वगैरह का, क्योंकि अंतर्मूर्त तक तो उसको देवगति और बाद में वो देवगति का ही बंद कर रहा है, तो ये सभी देवगति के साथ यही प्रकृतियां बंधेगी उसकी एक बार, और वहां निकलने के अंतर्मूर्त पहले उसने सम्यक तो प्राप्त किया, फिर 266 सागर तक वो सम्य दृष्टि रहा, बाद में मिथ्यात्व तो में गया तो फिर वो अन्य उसके दूसरी दूसरी प्रकृतियां बंधने लगी। अब तीर्थंकर प्रकृति का जघन्य बंध काल अंतर्मूर्त, यहाँ कभी एक समय नहीं कहेंगे, अंतर्मूर्त मिनिमम तो अंतर्मूर्त बंधेगी बंधेगी, हो सकता है ना श्रेणी चढ़ने उपशम श्रेणी चढ़ने के पहले अंतर्मूर्त बांध दिया, ऐसा भी हो सकता है, तो जघन्य बंध काल अंतर्मूर्त, और या दो उपशम श्रेणी के बीच में भी ले सकते हैं हम उसको, या उपशम श्रेणी से उतर कर फिर शपक श्रेणी चढ़ाए वहां पर भी ले सकते हैं, अंतर्मूर्त तक जघन्य बंध काल पॉसिबल है। उत्कृष्ट बंध काल साधिक 33 सागर है, साधिक 33 सागर कैसे, जो पहले भव में तीर्थंकर प्रकृति बांधना शुरू की तो कुछ कम एक पूर्व कोटि, फिर वहां से 33 सागर में जन्मा, वहां लगातार बांध रहा है, और फिर वहां से वो माँ के गर्भ में आए तो बांध ही रहा ना, कब तक बांधेगा, शपक श्रेणी चढ़ेगा हाँ तो आठवें गुणस्थान तक, तो बाद में कितना काल छोड़ना, वर्ष तीर्थंकर का उदय भी होगा ना, अंतर्मूर्त में वो अभी शपक श्रेणी पार नहीं कर सकता है, अरिहंत अवस्था 13वें का काल बड़ा होगा उसका, ये कुछ कम एक पूर्व में समझ लेना, वो कितना कम करना। वो चार आयु का जघन्य और उत्कृष्ट बंध काल अंतर्मूर्त है, ये आयु का जो बंध काल है वो कभी एक समय के लिए आयु बंधी ऐसा कभी नहीं होगा, हाँ वो बंध काल में छोटा बंध काल बड़ा बंध काल हो सकता है, उसको हम कहेंगे अंतर्मूर्त। यहां तक तो ओग से ये डिराइव करने का प्रयत्न किया है, अभी आदेश से वहां स्टार्टिंग का कुछ चला गया है, डायरेक्ट वो तीर्थंकर प्रकृति के वहां ही आया है नरक गति में, तो नरक गति में भी स्टार्टिंग वहां सब चला गया, वो हम यहां लिख लेते हैं। अभी आदेश से नारकियों में पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय जुगुप्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कारमान शरीर, औदारिक अंगोपांग, वर्ण चतुष्क, अगरुलग चतुष्क, त्रस चतुष्क, निर्माण और पांच अंतराय का, जघन्य बंधकाल 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट बंधकाल 33 सागर है। उनकी जघन्य आयु लेना है तो इतना तो बंधेगी बंधेगी। उत्कृष्ट बंधकाल 33 सागर। आप कहेंगे छह ही दर्शनावरण क्यों लिया? हाँ, क्योंकि स्त्यान वृद्धि का जो उत्कृष्ट है वो तो 33 सागर होगा, परंतु जघन्य एक समय भी हो सकता है। कैसे होगा एक समय? स्त्यान वृद्धि का जघन्य काल एक समय कैसे होगा? देखो सासादन में आया, नारकी इन जनरल है ना, तो सासादन में आया और एक समय रहकर मर गया, तो मर गया तो तिरंश में मनुष्य में कहीं उत्पन्न हुआ, तो नरक में सासादन के साथ एक समय। तो जब सम्यक औपशमिक सम्यक्त्व में था तब तो त्यान वृद्धि का बंध नहीं था, सासादन में एक समय के लिए बंध हुआ और मरकर वो उसकी गति चेंज हो गई, इसलिए नरक गति में एक समय उसका घटित हो सकता है। ख्याल में आई बात? फिर से देखो इसमें किस किस को लिया जो सासादन में बंधेगी और फिर चेंज हो जाएगी गति? तो स्त्यान वृद्धि त्रिक, अनंतानुबंधी चार, तिरंज गति, तिरंज गत्यानुपूरी, नीच गोत्र का, जघन्य बंधकाल एक समय और उत्कृष्ट बंधकाल 33 सागर है। यानी वो मिथ्या दृष्टि रहा तो बांधता ही रहा इस तरह से, और सातवें नरक में तो तिरंज गति लगातार बनती बनती, इसलिए उसकी अपेक्षा लिया। अन्य नारकी मिथ्या दृष्टियों के अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में चेंज होगी, नरक गति मनुष्य गति, तिरंज गति मनुष्य गति, तिरंज गति मनुष्य गति। सातवें नरक के नारकी के लिए मिथ्या दृष्टि रहा तो लगातार तिरंज गति बांधता रहा, ये उसका अर्थ होता है। सासादन में मरण है, जन्म नहीं है। सातवें नरक की अपेक्षा नहीं लेना यहाँ पर। 33 सागर बंध काल लिया यानी वो मिथ्या दृष्टि ही रहा। फिर से ये तिरंज गति का उत्कृष्ट बंध काल 33 सागर कहाँ है? वो सातवें नरक में ही घटित होगा, क्योंकि वो उसको मिथ्या तो में ही रखा लगातार, तो जन्म से लेकर मरण के समय तक तिरंज गति ही बांधी। देखो हमने ओग में तिरंज गति का उत्कृष्ट बंधकाल असंख्यात लोग देखा था, वायु का एक अग्नि का एक की अपेक्षा, और नारकियों में उत्कृष्ट बंधकाल 33 सागर होगा। फिर से पूछो,
नारकी जीव जो सासादन में आता है,
नारकी सासादन में आया? हाँ,
हमने इसे देखा था कि नारक जो सासादन में आता है, जो पहले मरण होता है वो देव में जाता है, नारकी नहीं जाता।
नारकी के लिए थोड़े वो रूल है, वो मनुष्य में जाएगा।
अच्छा, तो मनुष्य में जाएगा तो एक समय के लिए तिरंज गति बांध सकती है, क्योंकि
क्यों नहीं बांधेगा?
नहीं, शुरुआत में मरण हो जाएगा,
ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ, उदय की बात अलग है और बंधे की बात अलग है, यानी वो तिरंज गति बांधते बांधते तिरंज में जाएगा, तिरंज में उत्पन्न होने का निषेध तो नहीं है। कोई निषेध नहीं है। हाँ देखो देखो, मिथ्या तो आगे भी आ जाएगी ना बात, कहीं पर तिरंजों में भी बात होगी वो आगे चलकर, जो इसमें लिखा है। अरे देव में कैसा जाएगा नारकी? हाँ हाँ, वो तो जनरल कथन अलग होता है। देखो नेक्स्ट पेज पर लिखा है, 56 पेज पर, शासन समाधि केवल चिरम कालाद होती, वो तो शासन समय का काल बताया है।
का काल
और उसमें जो लिखा है वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम यहाँ पूरा करते हैं। ये हो गया ना, अभी मिथ्यात्व का देखते हैं। 10 पेज पर पढ़ रहे थे, मिथ्यात्व का जघन्य बंध काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि अंतर्मूर्त के लिए वो मिथ्यात्व में आया और फिर सम्यक तो प्राप्त किया। और उत्कृष्ट बंध काल 33 सागर है, यानी उसने तो मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहा लगातार, तो मिथ्यात्व का बंध लगातार किया। ये नारकी इन जनरल बात है, जहां जो घटित होता है उसको ले लेना है। साता वेदनिया असाता वेदनिया, स्त्री वेद नपुसक वेद, हास्य रति अरति शोक, 5 संस्थान 5 सहनन, उद्योत अप्रशस्त विहाय गति, स्थिरादि 3 युगल, दुर्भग दुस्वरा अनादेय का जघन्य बंध काल 1 समय। जैसे हमने ओग में इन प्रकृतियों का 1 समय देखा था प्रतिपक्ष की, और उत्कृष्ट बंध काल अंतर्मूर्त, क्योंकि ये बांधने वाले जो मिथ्या दृष्टि वगैरह हो गए वो अंतर्मूर्त से इसका बंध नहीं, वो उसकी जो प्रतिपक्षी प्रकृतियां वो नियम से बंधेगी बंधेगी अंतर्मूर्त के बाद। 2 आयु का भंग ओग के समान है, यानी आयु अंतर्मूर्त तक ही बनती है, जघन्य भी और उत्कृष्ट भी। हाँ, 2 आयु यानी नारके कौन सी आयु बांध सकते हैं, तिरंच आयु मनुष्य आयु, लगातार कितने समय तक बंधेगी, अंतर्मूर्त मिनिमम भी और मैक्सिमम भी, इनके नारकियों के 2 ही आयु बनती है ना, इसलिए 2 आयु का। अब जो सम्य दृष्टि नारके बांधता है उनका सम्यक तो में रहने का लगातार काल कितना है उसकी अपेक्षा यहाँ बता देंगे। देखो अब जो ऐसी प्रकृति है ना कि नारकी कौन सा बंद करेंगे, मनुष्य पंचेंद्रिय का ही बंद करेंगे, औदारिक का ही करेगा, उनको पंख तो बांधेंगे, तो उसकी तो लगातार बनती, उसकी जो उत्कृष्ट आयु है उसका उत्कृष्ट बंध काल, मिनिमम है उसका मिनिमम बंध काल, ये तो हमने पहले ही देखा था आदेश से नारकियों में, हमने देखा था पंचेंद्रिय जाति औदारिक शरीर वगैरह वगैरह सब हमने लगातार बनती ऐसी बातें देखी थी, क्योंकि वो पर्याप्त को ही बंधेगा, पंचेंद्रिय जाति ही बांधेगी, उसकी औदारिक शरीर अंगो पांग ही बांधेगा, तो लगातार बनती बनती है, न बंधे ऐसा कभी नहीं होगा। अब जो सम्य दृष्टि जिसको बांधता है उसकी चर्चा यहाँ पर है। अभी आपके लिए थोड़ा कठिन पड़ेगा, क्योंकि सम्यक तो ये बंध विच्छित्ति की बात एक बार ख्याल में आई ना, कि पहले गुणस्थान में कौन सी बनती है जो ऊपर नहीं बनती है, जो पहले दूसरे में बनती ऊपर नहीं बनती उसको कहेंगे बंध विच्छित्ति, जो स्टार्टिंग में दिए है वहां पर भी अपने महाबंध में भी इसमें भी है, तो वो एक बार याद हो जाए तो प्रकृति कौन सी कहाँ बनती है उसकी चर्चा अपने को समझ में आना आसान होता है। पुस्तक में है, महाबंध में था, महाबंध में था, महाबंध के पुस्तक में, पहली पुस्तक में। हाँ, मैं नीचे वो पुरुष वेद को पढ़ना है मेरे को। देखो अभी हमने वो साता असाता वगैरह वगैरह वो जो जिसको कहते हैं ना ये प्रतिपक्ष वाली मिथ्या दृष्टि जिसको बांधता है और जो प्रतिपक्ष वाली है वो 1 समय मिनिमम अंतर्मूर्त मैक्सिमम। अब पुरुष वेद मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी समचतुर्थ संस्थान वज्र ऋषभ नाराज सहनन। देखो ये प्रकृति ऐसी मिथ्या दृष्टि बांध तो सकता है पर सम्यक तो होने पर यही बंधेगी, तो मिनिमम के लिए तो हम 1 समय कहेंगे। हाँ, प्रशस्त विहार गति सुभग सुस्वर आदेय और उच्च गोत्र का जघन्य बंध काल 1 समय, क्योंकि वो प्रतिपक्ष की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि 1 समय तक बंद कर सकता है। और उत्कृष्ट बंध काल कुछ कम 33 सागर है। देखो ये पुस्तक में जो था उत्कृष्ट से देशों ने 33 सागरों में, देशों ने क्यों कहा, सातवें नरक का नारकी मिथ्यात्व में जन्मा है, पर्याप्ति पूरी होने पर अंतर्मूर्त के बाद समय को प्राप्त किया, और मरण के अंतर्मूर्त पहले वो मिथ्यात्व में जाएगा ही जाएगा नियम से, बाद में आयु का बंद करेगा, तो कुछ कम 33 सागर उसका सम्यक्त्व में रहने का नारकी का उत्कृष्ट काल है। उसके अपेक्षा ये प्रकृतियां लगातार बनते हैं तो इतने काल तक बनती है, ये उसका अर्थ हुआ। हाँ, अभी वो यथा योग्य दोनों ओर के अंतर्मूर्त कम कर देना, इसलिए कुछ कम में उसको आ गया। यहाँ से आगे का कथन मूल पुस्तक में पृष्ठ 55 पर है। देखो अभी वहां जो नारकी में एक ही लाइन लिखी थी, कहा देखो वहाँ स्टार्ट करते हैं, अभी 5 मिनट है ना, पेज नंबर 55 पर है। ना ना ना, वो तो मिथ्या तो मैं जाकर ही तीरियन चाहूंगा, वो तो नक्की है। ये लगातार इतने काल तक बांधी उसने, कुछ कम 33 सागर तक लगातार मनुष्य गति बांधी, अंत में जाकर मिथ्या तो में आयु का बंद करेगा, फिर तीरियन गति दी चाहिए सब बांधेगा और वहाँ चला जाएगा।
पैसा कमा सकता, खर्चा नहीं कर सकता, मनुष्य गति बांध रहा है,
वहाँ से नहीं मिलेगी। हाँ देखो यहाँ क्या कहा, काल प्ररूपणा में जहाँ नरक गति में लिखा है ना, स्टार्टिंग में पॉइंट पॉइंट में जो सारा त्रुटि अंश जो हमने अभी जानने की कोशिश की, जघन्य से एक समय, ये किसके लिए था, वो ये जो पुरुषवेद वगैरह जो हमने प्रकृतियां देखी, वो उत्कृष्ट से देशों ने 33 सागरोपम है। या अभी यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे, हमके तो अभी तो हमें कोई रुकावट नहीं, अभी लगातार चलेगी। पहली पुस्तक में तो इतने त्रुटि अंश है, बाद में अभी तीसरी पुस्तक की बात है, यानी ये अभी जो नया बनाया है वो अभी नहीं लाना है, तीसरी पुस्तक में कुछ काम आएगा, है ना, आगे का तीसरी पुस्तक का ही है ना त्रुटि अंश। हाँ 32 में, हाँ वो तो वृद्धि बंध का वो बहुत कठिन विषय, वो उसमें चला जाएगा। देखो अभी यहाँ पढ़ते, अभी तीर्थंकर प्रकृति का रह गया था यहाँ पर, क्योंकि नारकियों में बाकी सब प्रकृतियां देखी, तीर्थंकर प्रकृति का जघन्य बंधकाल 84,000 वर्ष, क्योंकि उक्षाई के लेकर जो आया है वहां पर पहले नरक में, जैसे अभी हम श्रेणिक राजा की बात करते तो मिनिमम 84,000 वर्ष, उससे कम आयु नहीं हो सकती वहां की, तथा उत्कृष्ट साधिक 3 सागर है, वो तीसरे नरक की तीर्थंकर की सत्ता वाले की उत्कृष्ट आयु साधिक 3 सागर लिया, वहां की आयु कितनी है, 7 सागर की है, परंतु तीर्थंकर की प्रकृति की सत्ता वाला जीव वो 7 सागर वाला नहीं, साधिक 3 में जो जितना होगा वो उतना होगा। हाँ लेस देन 4 साधिक 3।
हाँ
शायिक है वो पहले में ही जाएगा, और पहले में क्षौपशमिक जाएगा ही नहीं, ये भी है, जैसे दूसरे और तीसरे में क्षौपशमिक वाला मरण के समय मिथ्यात्व में जाकर वहाँ उत्पन्न होता है, दूसरे में और तीसरे में, वैसे पहले में क्या अर्जन है ऐसा हमने चर्चा की थी, परंतु क्षायिक वाला ही पहले में जाएगा, क्षौपशमिक वाला पहले में जाएगा ही नहीं, ये नियम है। तीसरे में जो जाते हैं ना बांधने वाले, वो मिथ्यात्व में जाकर जाते हैं। परंतु पहले में जाने वाला वेदक वाला नहीं होगा, क्षायिक ही होगा, ये नक्की है। इस बात पर अपनी चर्चा महाबंध के आधार से हुई थी, और ये स्पष्ट रूप से ऐसा लिखित आया है आगे कहीं चल के, यहाँ आया कि मालूम नहीं, हमने कहीं लिखा होगा, अन्य आगे लिखा है, नहीं नहीं फिर वो 84,000 उनकी मिनिमम है, बस इतना ही बताया उन्होंने, उत्कृष्ट से देशों ने 1 सागर है। हाँ पर वो उसमें ये बात नक्की नहीं होती कि वहाँ वेदक समय दृष्टि जा सकता है कि नहीं, वो आगे की पुस्तकों में आया है, यहाँ नहीं आया है वो, परंतु हमने नक्की किया और हमने पीछे लिख के भी रखा था। देखो यहाँ जरा देख लेते हैं, यहाँ नरक गति की बात, जगन्य से उत्कृष्ट देशों ने 33 सागर नरक गति में हो गया ना, तीर्थंकर का जघन्य बंधकाल 84,000, उत्कृष्ट साधिक 3 सागर, प्रथम नरक से छठे नरक पर्यंत, प्रथम दंडक का बंधक काल जघन्य से 10,000 वर्ष, 1 सागर यानी दूसरे नरक में 1 सागर मिनिमम बंधकाल, तीसरे में 3 सागर, चौथे में 7 सागर, पांचवे में 10 सागर, छठे का जघन्य वो 17 सागर, सब में कुछ अधिक है, कुछ अधिक है ना, एक एक समय बढ़ा देना। तथा उत्कृष्ट अपने अपने नरक की स्थिति प्रमाण जानना, अर्थात क्रमशः 1 सागर, यानी पहले नरक के लिए 1 सागर, दूसरे में 3 सागर, तीसरे में 7 सागर, चौथे में 10 सागर, पांचवे में 17 सागर, छठे में 22 सागर। साता दंडक में तीर्यंच गति त्रिक में प्रविष्ट जीव का नहीं चाहिए ना? साता दंडक में तीर्यंच गति त्रिक, यानी तीर्यंच गति अनुपुरी और निज गोत्र का, बंधकाल जघन्य से 1 समय, उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त प्रमाण है। स्त्यान वृद्धि दंडक का बंधकाल नरक गति की ओग रचना के समान है। विशेष है कि यहाँ अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए। उत्कृष्ट बंधकाल कितना है, अपने जो हरेक नरक में कितना कितना है उसके, पहले में इन जनरल नरक गति की बात की, फिर पहला नरक, दूसरा नरक, तीसरा नरक, अलग का हरेक का अलग अलग ले लिया है, यानी वो 6 नरक तक, देखो यहाँ क्या है, पहले से 6ठे नरक तक की बात चल रही थी, उसमें तीर्यंच गति का बंधक काल उत्कृष्ट कितना होगा, अंतर्मुख, केवल 7वें नरक में 33 सागर हो सकता है, बाकी तो अंतर्मूर्त ही होगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि ही बांधता है और अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं बांधेगा, लौट कर मनुष्य गति बांधेगा ही बांधेगा, ये उसका अर्थ होता है। क्योंकि पहले हमने ओग में साता दंडक में तीर्यंच गति को लिया था, उसको अलग से लिया था ना, उसमें यहाँ साता दंडक में तीर्यंच गति को इंक्लूड करना है, 6ठे नरक तक। हमने ओग में जो साता दंडक लिया था, साता वगैरह, 10वीं पेज थी, कौन सी थी, ना उसमें तीरंज गति को इंक्लूड नहीं किया था ना हमने, वो तो हमने अनंतानुबंधी के साथ तीरंज गति को लिखा था और उत्कृष्ट बंधकाल 33 सागर लिया था। अब उसको साता दंडक में रखना है, पहले से 6ठे नरक तक। साता दंडक यानी कौन से, वो प्रतिपक्ष वाली प्रकृतियां, जघन्य 1 समय, उत्कृष्ट अंतर्मूर्त, ये यहाँ कहना चाहते हैं। स्त्यान वृद्धि दंड का बंधकाल नरक गति की ओग रचना के समान, यानी नरक गति में सामान्य से जो कहा वही है, क्योंकि हमने देखा था ना मिनिमम 1 समय सासादन की अपेक्षा और मैक्सिमम अपनी अपनी वहां की स्थिति। विशेष है कि यहाँ अपनी अपनी स्थिति, यानी प्रत्येक नरक की जो उत्कृष्ट स्थिति है उसको यहाँ कहना चाहिए। यहाँ विशेष लिखा है, ओग रचना वाला ताड़ पत्र का अंश नष्ट हो गया, अतः ओग रचना अज्ञात है। अभी हम यही रुकते हैं, क्योंकि वो सारे बाकी के विशेषांक कल पढ़ेंगे। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देतहु मैं।